ಜ್ಞಾನಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರುಳುಮಿತಂ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯಿತಿ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯನಾಮ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯಾ ಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರ್ವೋಭಿನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜಿಮಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞೇಯ ರಾಧಿಕಂ ಮಾಂ All are hearing. Sound is going on. Bhakti ka एक ऐसा स्वभाव है कि जिनके हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति प्रविष्ट हो जाती है वो दूसरे में कृष्ण के प्रति भक्ति का कहीं थोड़ा सा दूर से भी संबंध देखता है तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है और अपने दुर्भाग्य की निंदा करता है। ये हमारा ऐसा नहीं है। वेर देयर इज ए भक्ति ए लिटिल भक्ति वेरी लो काइंड ऑफ भक्ति इज देयर भक्ति मेक्स दैट पर्सन और दैट डिवोटी दैट anyone if he sees any connection with bhakti
krishna
any relation to krishna if he sees that anyone is chanting the name of krishna koi krishna ka naam le raha hai krishna ke liye sarvasva tyag kar diya hai तो उसकी सब समय प्रशंसा कर अपने दुर्भाग्य को कोसता है कि हमारा ऐसा भक्ति नहीं हुआ। गोपियां प्रेम की अंतिम सीमा पर शिखर पर आरूढ़ हैं और एक त्रेण की प्रशंसा कर रही है। गोपीदार एस्टैब्लिश्ड इन द हाईएस्ट टॉप ऑफ प्रेम बट इवन देन they are glorifying even a grass even a piece of wood piece of patthar stone
dust
a
particle of
dust of any dust touched by the feet of krishna So if anyone wants to have a bhakti and he is chanting and remembering Krishna name but he is abusing others or if that devotee so called devotee is criticizing all others or anyone who is chanting remembering then we should understand that he has not a drop of bhakti, and he in lakhs and lakhs births he will not have bhakti. If anyone abusing, quarreling, and not seeing the good qualities of any bhakta,
criticizing,
then he should go to Karmanasha, and there he should drink, he should
drown in that
Karmanasha river, not in Ganges as Jamuna. उनको गंगा जमुना में नहीं, कर्मनाशा रिवर मगध प्रदेश में जरासंध के राज्य में बहती है, वहां जाकर के डूब जाना चाहिए. इस उड्राउन देर देन देयर कर्म कैन गो आउट. सो एनी वन इफ दे वांट ए लिटिल बीट ऑफ भक्ति, दे शुड नेवर क्रिटिसाइज एनी वन who is chanting, remembering, living in Vrindavan. He should, if an ant of Vrindavan
bites,
even they should do like this. Then they are qualified to be in Vrindavan, otherwise not. And if they are criticizing any Vaishnavi, devotees, a separate hell will be
for them
will be. These hells are not sufficient for that person. They are not qualifying to hear all these things. So if there are any यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए इन गोपियों से. इतनी ऊंची ऊंची कथाएं सुनते हैं, वैष्णवों से लड़ते झगड़ते हैं, और हमारे पास में आकर के नालिश करेंगे. उनको कोर्ट में जाना चाहिए. वो सब हम लोग देखने सुनने के लिए समय बर्बाद करने, वी आर नॉट कम टू वेस्ट अवर टाइम इन ऑल दिस थिंग्स. सो गोपीज आर टेलिंग, I am telling all these things, I am explaining all these things from so many days. The words of Srimati Radhika, the words of Gopi, the words of Sukadeva Goswami, the words of Srila Sanatana Goswami. What they are doing? आज मैंने व्याख्या की कल कि ये गोपियां प्रेम की शिखर पर आरूढ़ होकर के भी जिस किसी प्रकार से कृष्ण का कोई भी संबंध देखती हैं किसी में, वो कहते हैं कि इसी का जीवन सार्थक है, हम जन्म लेकर के उसी जन्म जाएंगे. यदि वो देखती हैं कि ये हवा भाग करके आ रही है नंदगांव से और कृष्ण के अंगों से बह करके आ रही है, कहिए मैं हवा लेकर के जन्म लेती, विधाता हमें हवा बना दी. और श्रीमती और कृष्ण क्या सोचते हैं, जस्या कदापि वसनं चलोखे लोनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृताक्षमान जोगिंद दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी नमस्तु वो दिशे. कृष्ण इज टेलिंग हिमसेल्फ, हु इज ही, वो कौन है? रसिक शेखर है, स्वयं भगवान है, समस्त अवतारों के अवतारी हैं. और वो कह रहे हैं कि उस हवा को मैं कृतार्थ हो जाता हूं जो राधिका जी के नहीं राधिका जी के अंचल को स्पर्श कर आ रही है. और कृष्ण को लगी, कहते हैं कि धन्य आती धन्य पौने न कृतार्थ मान, वो हवा धन्य है. आप उस धन्य को हवा धन्य को पा करके स्पर्श करके मेरा जीवन आज कृतार्थ हो गया. तो भक्तों को कैसा होना चाहिए ऐसा समझो. बोल दो थोड़ा सा ये जो अंत है धन्यास्म मूढ़ मतोय अपि हरण्य एक जानंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण रेणु रहितम सह कृष्ण सारा पूजांग दधौ विरचितांग प्रणयावलोक धन्यास्म मूढ़ मतोय अपि हरण्य एक गोपिया कह रही है महाभावती गोपिया कह रही है यह वृंदावन की तो बात ही क्या, इसके पहले वृंदावन के वृंदावनम सखी भो बितने करती जदेव की सुत पदम जलप जलक्षी वृंदावन की मैं क्या कहूं। वृंदावन तो कृष्ण की विहार भूमि है, नंगे पांव चारों तरफ में डोलते हैं और वृंदावन उनकी सब प्रकार से सेवा करता है, उनके परिकरों की सेवा करता है, उनके सखाओं की, उनकी गैयों की, सबकी सेवा करता है, उनके लिए गोवर्धन की शिलाएं देता है जिस पर कृष्ण विराजमान होते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर कुंज देते हैं, उनके लिए वृंदावन भूमि खेलने के लिए, स्नान करने के लिए कुसुम सरोवर, मानस गंगा, पावन सौरी इत्यादि ये सब चीज देते हैं, प्रकृति को सजा करके वृंदावन रखते हैं। इसलिए वृंदावन की महिमा क्या कहूं, बचपन से लेकर के किशोर अवस्था तक सब समय वृंदावन उनके कृष्ण के और उनके संगी साथी जितने सबके आश्रय हैं। इसलिए वृंदावन की मैं क्या महिमा वर्णन करूं, वृंदावन की एक धूली कणा भी हम नहीं हो सकती हैं। कल बतलाया था ना, यहां कृष्ण चरण रखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, उद्धव ने अक्रूर जी वहां पर चरण में लौटते हैं उस धूली में। बस वृंदावन की एक धूली काढ़ा भी हम नहीं हो सकते, ओ वृंदावन में रहने वाली हिरणियों को तो देखो धन्यास मूल मतलब अपनी धारण में हिरण्य को तो देखो ये मूढ़ है, जहां नंदनंद दनम उपात विचित्र वेश जो कृष्ण की रूप माधुरी को देखकर और आकर्ण वेणुरणितम कृष्ण के वेणुनाद लहरी को सुनकर अपने पतियों को साथ लेकर प्रणयालोकम के द्वारा कृष्ण को प्रणय पूर्वक देखकर अपनी आंखों से ही उनकी पूजा करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। देखो यही धन्य है मूढ़ होने पर भी, मूढ़ किस लिए, ये नहीं सोचती हैं कि कौन बंसी बजाई वेणु बजाया, कोई बहलिया तो नहीं जो जाने से उसे मार डालेगा, अधिकांश में बहलिए ही हिरणियों का शिकार करने के लिए बंसी बजाते हैं और जाल में उसे फंसा कर उसे मारकर उसका मांस खाते हैं, हिरणियों को पता नहीं ये कौन बंसी बजा रहा है, किस लिए बजा रहा है। इसलिए जब कृष्ण वेणु वादन करते हैं तो ये मूड हो करके भी नहीं जानती है कि कहां हम जा रही हैं, किसलिए खींची हुई आकर्षित हुई होकर के कृष्ण के समीप पहुंच जाती है, इतनी समीप में पहुंच जाती हैं कृष्ण उनका स्पर्श कर सकते हैं, पहुंच करके विचित्र वेश देखती हैं। कैसा वेश? बरहा पीड़म नटवर बहु कर्णयो कर्णिका, ऐसा सुंदर वेश देकर के अपने को कृष्ण के ऊपर में न्योछावर कर देती हैं। ये कृष्ण कौन? केवल कृष्ण नहीं, नंदा नंदन है। भगवत्ता की रस की ये सीमा है। देख करके पागलनी सी हो जाती हैं, खड़ी होकर के क्या करती हैं? प्रणय से बड़े प्रीति पूर्वक कृष्ण के आंखों की तरफ में देखती हैं, आंखें में आंखें मिलाकर उनका रूप सौंदर्य देखती हैं और कानों से कृष्ण के वेणुमाधव वेणुनाद को श्रवण करती हैं। यहां पर कहते हैं सनातन गोस्वामी जी या टीकाकार, पूजांग दधौ, पूजांग दधु विरचितांग, विशेष रूप से रचितांग आचरितांग, विशेष रूप से पूजा करती हैं। पूजा ही नहीं करती, पूजा तो 16 प्रकार के उपकरण से, द्वादश प्रकार के उपकरणों से कोई पुजारी कृष्ण की पूजा करता है, किंतु वह पूजा पूर्ण भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। किंतु इन लोगों ने जो पूजा की, जिस प्रकार से, कोई भी उपकरण नहीं, न जल है, न चंदन है, न आरती है, न कुछ है, किंतु प्रणय के द्वारा जो कृष्ण की तरफ में देख रही हैं, ये ऐसी उनकी आराधना हुई, ऐसी पूजा हुई जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अब कृष्ण ने किया क्या? दधौ, अब दधौ को कृष्ण की तरफ में भी लगाओ। कृष्ण उस पूजा को, किस पूजा को? जो प्रणय से कृष्ण की आरती उतार रही है, देख रही है, प्रणय की भीख मांग रही है, कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर के उसकी पूजा को ग्रहण करते हैं और सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे इसमें लिखा है राय रामानंद संवाद में, सब प्रकार के उपकरणों के साथ में कृष्ण की जो पूजा होती है, उस पूजा में जरूरी नहीं है जो कृष्ण की तृप्ति हो। यदि पूजक के हृदय में प्रेम है, ऐसा अनुराग है, तो कृष्ण ग्रहण करते हैं। जैसे किसी को भूख और प्यास नहीं है, भोजन षडरस उसके सामने है, बड़ा सुस्वादु भोजन, किंतु उसको अच्छा नहीं लगेगा, प्यास नहीं है, सुशीतल जल उसके सामने देने से भी वो ग्रहण नहीं करेगा। यदि प्यास और भूख है तो अन्न और जल की, जैसा भी हो, एक सूखी रोटी में भी उसकी बड़ी तृप्ति होती है, बहुत ही रसा स्वाद उसको होता है। और भूख नहीं है तो मोहन भोग और मिठाई भी उसके लिए कुछ नहीं। इसलिए भूख के ऊपर में और प्यास के ऊपर में भोजन और पान का रसा स्वादन निर्भर करता है। भूख ही नहीं है क्या करेगा, प्यास नहीं है पानी की क्या जरूरत है। इसलिए जिसके अंदर में कृष्ण की के प्रेम की भूख नहीं है, उसके समस्त उपकरणों के द्वारा दिया जाने वाली पूजा और अर्चन आराधना भी निष्फल है। अब इसमें देखा जाता है भूख किसमें है, जिसको भूख लगेगी उसको अच्छा लगा, तृप्ति होगी। अब देखो जैसे साधक में यदि भूख है तब तो उसको बहुत ही अच्छी लगेगी, किंतु यहां पर कहते हैं कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण को तृप्ति होती है, ये कैसे? इसलिए जसोदा जी को कृष्ण को यदि खिलाने के लिए भूख होती है तो कृष्ण को भी भूख लगती है, और जसोदा जी को सेवा करने की भूख नहीं है तो कृष्ण को कभी भी भूख नहीं लग सकती। ये सुदामा विप्र द्वारका में जाते हैं, किंतु जब ही देखते हैं कि हमारी भाभी ने कुछ दिया होगा जरूर, और ये दे नहीं रही अपने बगल में रखे हैं, तो कृष्ण को भूख लग गई। क्यों दे नहीं रही हैं? तभी उनको भूख लगी और उनके बगल से निकाल करके उसे खाए, कृष्ण को प्रीति हुई। क्यों? ले गए थे खिलाने के लिए, प्रेम तो है किंतु उपकरण नहीं, सूखा चिड़वा चावल। कृष्ण को रसस्त और अच्छी सुस्वादित चीज चाहिए, चीड़े में कुछ रस है, पानी यदि न दो उसमें तो निरस वस्तु, और वो भी कांजने कब का पुराना और टुकड़े। किंतु उसी को कृष्ण पाकर के उनको बड़ी भूख लगी। क्यों लगी? उनको भूख नहीं लगती, किंतु भूख थी उनकी ब्राह्मण की पत्नी को और ब्राह्मण को भूख थी प्रेम की, इसलिए उनको भूख लग गई और उसी से वो तृप्त होकर के उनको बहुत कुछ दे दिया जिसकी कल्पना नहीं करते थे। इसलिए ये हिरणियों के लिए गोपियां कह रही हैं, आहा इनका जीवन सार्थक है। पूजांग दधौ विरचितांग, विशेष रूप से इन्होंने पूजा की। वो पूजा क्या थी? प्रेम से अपने नैनों से कृष्ण की आरती उतार रही हैं, और उस समय में पूजा में घंटा घड़ियाल कुछ बजना चाहिए ना, तो कृष्ण स्वयं ही बांसुरी बजा रहे हैं, इतने तृप्त होकर के कर रहे हैं, इसलिए बड़ी आनंदित होकर के अपना सर्वस्व आंखों के माध्यम से देख करके उनकी आरती उतार रही है। ये सर्वस्व आराधना है, सर्वोच्च आराधना है। जरा बोल दीजिए। यहां पर एक लक्ष्य करने की बात है, प्रणयावलोकई पूजांग दधौ। प्रणयावलोक प्रणय मैंने क्या देखो तो प्रणय गोपियां राधा जी के लिए कहा गया, ये कृष्ण की प्रणय विकृति है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति। ये प्रणय विकृति क्या? स्नेह प्रणय की विकृति नहीं है, मान प्रणय की विकृति नहीं है, और भी बहुत चलो, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव से आरंभ होता है प्रणय की विकृति। कितनी ऊंची चीज है ये, गोपियां देख रही हैं, अरे इनको प्रणय है, और इसलिए प्रणय के साथ में कृष्ण की इस दृष्टि से ही, प्रणय दृष्टि से ये आरती उतार रही हैं, उनकी आराधना कर रही हैं। हमें कहां ये, हमें प्रणय नहीं जो हम इस प्रकार से कर सके। कौन कहता है कि ये हिरणियां मूढ़ हैं? ये तात्पर्य, धन्यास्म मूढ़ मतयो। अजी इन प्रणय वाली हिरणियों को यदि कोई मूढ़ कहता है तो हम मूढ़ होना नहीं चाहती है। मूढ़ होकर के भी यदि कोई कृष्ण को प्रणय की दृष्टि से देखे, उनकी सेवा करे प्रणय पूर्वक, तो वो श्रेष्ठ है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर के, कृष्ण की भूमि में जन्म लेकर के, गोपी के घर में जन्म लेकर, उनके साथ में सब समय रह करके भी, खेल कूद करके भी, जिसके अंदर में कृष्ण के प्रति प्रणय नहीं हुआ, तो ये बुद्धिमान मनुष्य जाति में जन्म लेने का क्या फल, वो व्यर्थ है। बल्कि ये मूढ़ हिरणियां ही धन्य है जिनके अंदर में ऐसा प्रणय है, और उस प्रणय के साथ में कृष्ण की आरती उतार रही है, और कृष्ण दधौ, कृष्ण उसको ग्रहण स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग इसके योग्य नहीं है, हमारे अंदर में तो तनिक भी कुछ नहीं है, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं जो कृष्ण के समीप में जा सके, हमारा ऐसा दुर्भाग्य है। अरे देखो तो इनका कितना सौभाग्य, सह कृष्ण सारा, इसके पतियों के साथ में ही आती हैं, पीछे पीछे पति चलते हैं। हिरणियों को पता नहीं है कि हमारे पति हमारे साथ में आ रहे हैं कि नहीं, उनको पता नहीं, पति देख रहे हैं कि ओहो इनका जन्म सार्थक है, ये कृष्ण को ही जीवन का सार बनाए हैं। इसलिए उनके पति ये समझते हैं कि हमारी पत्नियां कृष्ण के प्रति अनुरागवती हैं, उनका अनुराग है, इनका जीवन कितना सुंदर है, इनका जीवन सफल है, इनके पति होने के नाते हमारा भी परम सौभाग्य है जो ऐसे पत्नियों को हमने पाया जो कृष्ण में इतना अनुराग, इसलिए उनका अनुगमन कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि साधु साधु तुम्हारा ही जीवन सार्थक है, और तुम्हारे साथ में संबंध होने से हमारा जीवन भी सार्थक है, इसलिए हमको कृष्ण सार कहते हैं लोग, और सचमुच उनका जीवन ऐसा है। इसलिए गोपियां कह रही हैं प्रणय के साथ में ये पूजा कर रही हैं, और कृष्ण उसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि कोई आदमी मूर्ख भी हो, मूर्ख से मूर्ख, किंतु कृष्ण के प्रति उसको अनुराग, अनुराग को छोड़ो श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कुछ भी हो, उसका जीवन सार्थक है। और बुद्धिमान होकर के, संसार में सबसे बुद्धिमान होकर के यदि कृष्ण के चरण में श्रद्धा नहीं, तो उसका जीवन बेकार का है। इस चीज को समझना चाहिए। नेक्स्ट, गोपियां कह रही हैं हमारे पति कैसे हैं, हमारे पति ऐसे हैं जो कृष्ण सार नहीं है उनके लिए, बल्कि कृष्ण को देखते ही चिढ़ जाते हैं, उनका नाम गंध कहीं सुने तो उनको क्रोध हो जाता है। जैसे कंस, गोवर्धन, अभिमन्यु और भी जितनी ललिता सखी के पति जितने हैं, दुर्मद, अनंग मंजरी के पति का नाम है दुर्मद, ये सभी यदि कृष्ण का कहीं गंध भी आ गया, नाम का भी गंध आ गया, क्रोधित हो जाते हैं, सह नहीं सकते, झूठ मूठ का कलंक लगाते हैं। हमारे पति ऐसे नहीं है, जिनका पति ऐसा हो, कृष्ण भक्त हो, और जिनकी पत्नी कृष्ण भक्त हो, सचमुच में उनका जीवन बड़ा ही धन्य है। लो करें या बंद कीजिए। जंगल में वृंदावन में चर रही थी, घास चर रही थी, और उनके बच्चे उनके साथ में फुदक रहे, उनको लाड़ प्यार कर रही थी, किंतु जैसे ही आकर्ण वेणु रणितम, कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण किया है हिरणियों ने, बच्चों का स्नेह करना भूल गई, घास चरना जो खाना है ये भी भूल गई, देह दैहिक सब कुछ भूल गई। कृष्ण की भक्ति ही ऐसी है जिसमें होती है ऐसे करा दे, देह दैहिक सब कुछ भूल जाता। गोपियां इसकी चरम सीमा है, कृष्ण ने स्वयं उनकी प्रशंसा की, उद्धव जी से कहा था गोपियां देहदायक सब कुछ हमारे लिए भूल जाती हैं, केवल इसीलिए जीवित हैं कि कल मैं वृंदावन में लौट करके आऊंगा, इसीलिए बोलोगे नहीं। गीता में मनमना भव इत्यादि जो दिखलाया गया है केवल गोपियों में ही सार्थक है और कहीं विश्व में नहीं देख सकते। गोपियां देख रही हैं भाव नेत्र से, देखो तो ये चर रही थी। खाना बहुत जरूरी है, आदमी लाख काम छोड़ करके खाएगा और अपने बच्चों को भी स्नेह करेगा। दिन भर आदमी परिश्रम करता है, शाम को आकर के खाकर अपने बच्चों के साथ चिड़िया भूल गई, जब ही कान में आवाज आई बंसी की और भूल गई, बच्चों को भी भूल गई। बच्चे के तरफ में देखा नहीं, पति के तरफ में देखा नहीं, घास खाना भी, बल्कि जो घास उनके मुख में थी बस मुख में ही रह गई, कान खड़े करके कृष्ण के समीप देखा। भक्ति इसको कहते हैं। साधन भक्ति में भी कृष्ण की कथा सुनकर ऐसा ही होता है, होना चाहिए। तव कथा मृतम तप्त जीवनम कभीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम विपिनन्ति। कृष्ण की कथा ही ऐसी है, यदि कृष्ण की कथा सुनकर कृष्ण की कुछ भक्ति कर यदि हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं आई कि संसार का सब कुछ छोड़ दे, कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग, यदि भावना नहीं आई क्या भजन भी करें। और कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रीति लिए सब कुछ करें, जो कुछ भी क्रिया होगी कृष्णार्थे अखिल क्रिया, अखिल क्रिया चेष्टा, अखिल चेष्टाएं कृष्ण की सेवा के लिए। फिर संसार में उसकी कहीं भी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए गोपियां सावधान कर रही हैं कि देखो यदि घर में स्त्री पुत्र परिवार के साथ में रंग पूर्वक यदि संसार में उपभोग करना चाहता है तो खबरदार उन लोगों के पल्ले मत पड़ना जो बगल में पोथी दबाए हुए बिना पैसे का हरि कथा वितरण किया करते, खबरदार उनकी बात मत सुनना नहीं तो तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये गोपियां ये देख रही हैं कि अपने बच्चों को भी प्यार करना छोड़ दिया, घास खाना उसने छोड़ दिया और छोड़ करके कृष्ण के समीप आकर प्रणय पूर्वक उनको देखने लगी। हमारा ऐसा नहीं, उन हिरणियों को लोक लज्जा कुल का भय कुछ नहीं रहा, पागलनी हो गई। गोपियां कहती हम तो पागल नहीं हुई, हम तो अपने ससुर सास से डरकर अपने पतियों के डर से लोक लज्जा के डर से कृष्ण के समीप जाकर के खड़ी होकर के प्रणय पूर्वक उनको देख सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं। ये हिरणियां ही यथार्थ में इसीलिए लोक लज्जा की कोई परवाह नहीं, पति क्या कर रहा है उसके लिए भी परवाह नहीं, चर्चित पति छोड़ भी दे तो कोई भी बात, और उसका पति अपने को सौभाग्य मानता है जी ऐसी हमारी पति क्योंकि हम पति थे, हमारे पति हमारे विमुख और हम ऐसे अभी धैर्य नहीं छोड़ सकती, लोक लज्जा नहीं छोड़ सकती है, इसलिए यदि हम मर करके आए हिरणी बन करके आए तो हमारा जीवन सार्थक, इस जन्म में हमारे लिए संभव पर नहीं है, गोपी जन्म में संभव पर नहीं, कभी मूढ़ हरिणी इत्यादि के रूप में भी हमारा जन्म हो जाए, जिस किस प्रकार से यदि कृष्ण से हमारा संभव, हम अपने जीवन को समझेंगी अपनी आंखों को भी साफ कर सकेंगे। रतन गोस्वामी जी दो शब्द का एक अर्थ और निकाल रहे वह क्या है, हिरणिया प्रणय व लोकई नंद नंदनम दधौ, वो क्या प्रेम में ऐसी पगी हुई है कि पूरे वाक्य को नहीं कह रही, अपने प्रणय और लोक से कृष्ण को कर दिया, क्या कर दिया ये कहना भूल गई, क्या कर दिया वशीभूत कर दिया। सनातन गोस्वामी में जोड़ रहे हैं दधौ अर्थात वशीभूत उनको कर दिया, कैसे वशीभूत कर दिया, कैसे समझ रहे हो जो वशीभूत कर दिया। कृष्ण उनकी तरफ में देखने लगते हैं, जब वो प्रणय लोक से उनके तरफ में देखते हैं तो कृष्ण की देखते आओ बड़े प्यार से हमारे तरफ में, कृष्ण का चित्त द्रवित हो जाता है और इसलिए उनकी पूजा को तथा इन्होंने स्वीकार कर लिया और उनके प्रेम के वशीभूत हो गए। कृष्ण ऐसे उदार है। और यदि हम भी जाएं तो हमको अस्वीकार कर देंगे, परम उदार हमें ग्रहण कर देंगे, कभी भी हमें निराश नहीं कर सकते, किंतु हमारा जीवन व्यर्थ है क्योंकि हम ऐसे जा ही नहीं सकते, हमारे लिए ऐसा जाना असंभव। इन सब के द्वारा शिक्षा क्या, साधकों के लिए क्या शिक्षा मिलती है? यदि भजन करते हुए भी संसारिक वस्तुओं के प्रति किसी का मोह ममता है, कृष्ण के प्रति वो प्रणय प्रीति नहीं हुई, तो साधन भजन में बहुत अधिक है। ये श्रेणियां सब कुछ भूल जाती है, कृष्ण का स्मरण चिंतन कीर्तन करती हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। साधक को भी ऐसा होना होगा, तब कृष्ण मिलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं मिलेंगे। ये इधर भी संसार में भी है हमारा चित्त, उधर भी है, अब तो कृष्ण नहीं। इसलिए हम लोगों को भी वैसा होना होगा, तब कृष्ण हमारे प्रेम से वशीभूत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। सचमुच में ये गोपियां देख रही हैं कि इनका उनके प्रति प्रणय है या उनमें है कुछ। मैं समझता हूं गोपियां बहुत अधिक देख रही हैं, उनमें उतना नहीं होने पर भी जरूर है, नहीं तो वेणुनाथ से आकर्षित होकर के सब कुछ को छोड़ करके पागलनी होकर के कृष्ण की तरफ में देख रही है, ये संभव पर इधर सचमुच में वो धन्य है, उनका जीवन धन्य है। और हम लोगों का, जब गोपियां कह रही हैं कि हमारा जीवन धन्य नहीं, हम परवश हैं, हम जा नहीं सकती, हम बंधन में, संसार के बंधनों में जकड़ी हुई हैं, हम नहीं जा सकते। और हम लोग संसार को छोड़ करके आए हैं, किसी का पराधीन भी नहीं है, किंतु स्वयं विश्व में जा रहे हैं, ये बड़े परिताप और दुख की बात है। जरा विचार करके देखो, बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म पाया, संसार को छोड़ दिया, सब नाते फाते सब छोड़ दिया, अपना धन छोड़ दिया, घर का सब कुछ, और फिर उसी यदि उसी के लिए हम ममता में जाते हैं, धन को संग्रह करने में चित्त जाता है, और वैसे ऐसे विलास की तरफों में हमारा चित्त जाता है, फिर किसी स्त्री या पुरुष के प्रति हमारा मन जाता है और कृष्ण का भजन करने का स्वांग दिखलाते हैं, तो हमारे लिए धिक्कार है। इसलिए चित्त को ऐसा रखना चाहिए जैसे सब समय कृष्ण का ही चिंतन, उनके भक्तों का चिंतन, उनका स्मरण, और किसी बात का भी कोई भी तनिक भी इधर उधर चिंतन नहीं जाए, तब तो भजन हम कुछ अग्रसर हो, और नहीं तो अनर्थ में डूब करके भक्ति से जो है वो भी वंचित होकर के नहीं, न जाने कहाँ रसा कर। आज यही कह करके अपना वक्त करके मैं समाप्त।